तारीख 25-8-1997 श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 195 पर पूज्य भाई श्री शशिभाई नु भावनगर मा प्रवचन सड़ंग प्रवचन नंबर 598।
બ્રહ્માંડ દેખાય ને એને જોડે જ ના આવ્યો હોય તો પછી એનો રસાવાનો સવાલ રહેતો નથી. જે ટેબલ ટેનિસ તું છોડી નથી શકતો એ વગર મહેનતે છૂટી જાય, વગર પુરુષાર્થે છૂટી જાય. પરિભ્રમણની વેદના એવી છે. શ્રીમદ રાજચંદ્ર વંશ નામ હિન્દી મને પત્રાંક 195 पत्र का रीडिंग है। सत स्वरूप को अभेद रूप से अनन्य भक्ति से नमस्कार। सत स्वरूप मैंने त्रिकाल सतरूप है, मैंने मौजूद है, जिसकी मौजूदगी त्रिकाल है उसको कहते हैं त्रिकालिक सत्य। ऐसा जो अपना स्वरूप उसको अभेद रूप से नमस्कार मैंने, मैं नमस्कार करने वाला और मेरा स्वरूप नमस्कार करने योग्य, ऐसा दो पना का भाव बीच में नहीं है। मैंने जो पर्याय अपने स्वरूप में लीन हो जाती है, ढल जाती है, लीन हो जाती है, वही अभेद नमस्कार है। सत स्वरूप मैंने त्रिकाल अस्तित्व जिसका है, अविनाशी अस्तित्व है, ऐसा जो अपना सत्स्वरूप उसको अभेद रूप से मैंने नमस्कार करने वाला और नमस्कार करने योग्य, ऐसा जिसमें विकल्पात्मक भेद नहीं रहा। लेकिन अपने स्वरूप की महानता, अपने स्वरूप की पवित्रता, अपने स्वरूप के ऐसे दिव्य गुण देख करके देखने वाली अवस्था उसमें लीन हो गई, उसी को अभेद भक्ति से नमस्कार बोलने में आता है। अभेद अनन्य भक्ति, अनन्य मैंने ऐसी भक्ति कोई होती नहीं, ये पराभक्ति है। पराभक्ति मैंने आखिरी चरम सीमा की भक्ति है। दो पना नहीं रह रहे वो पराभक्ति है, ऐक्य हो जाए, देव पर्याय का ऐक्य हो जाए, ऐसी निर्विकल्प अवस्था को अनन्य भक्ति रूप नमस्कार बोलने में आता है। ऐसी अपनी भक्ति का स्मरण करके पत्र का प्रारंभ करते हैं। मार्ग की इच्छा जिसको उत्पन्न हुई है, मार्ग मैंने उपाय, संसार का नाश करने का उपाय और सिद्ध पद मोक्ष पद निर्वाण पद प्राप्त करने का उपाय, उसको कहते हैं मार्ग, यानी रत्नत्रय रूप मार्ग। हमने दर्शन सम्यक, ज्ञान सम्यक, चारित्र, वही उपाय है इसका। संसार का नाश का भी वही उपाय है और मोक्ष पद का भी वही उपाय है। ऐसा मार्ग की इच्छा, मार्ग की इच्छा मैंने मार्ग प्राप्त करने की इच्छा जिसको उत्पन्न हुई है, उसे सभी विकल्प को छोड़कर यह एक विकल्प बार बार स्मरण करना आवश्यक है।
कल कोई छोड़ करेंगे, मतलब जो परलक्ष छूंगा,
परलक्ष छोड़ना और जो नीचे निम्न जो विकल्प दिया है उसके छोड़कर दूसरा नहीं होना। मार्ग प्राप्ति के लिए अन्य प्रकार का उपाय में नहीं जाना, यही विकल्प में आना है, ऐसा कहना चाहते हैं। परलोक की बात तो बहुत दूर गई, लेकिन उपायांतर की बात भी नहीं, क्या दूसरा उपाय की बात भी नहीं, वो बात है। याद करना, स्मरण करना माने याद करना। अब ये पहला वचन हमने पढ़ा कि मार्ग की इच्छा जिसको उत्पन्न हुई है, तो इस वचन का स्वाध्याय करते हुए, स्वलक्ष्य से स्वाध्याय करते हुए हमें हमारे में तलाश कर लेनी चाहिए, चेकिंग कर लेना चाहिए कि क्या वाकई हमको मार्ग की इच्छा उत्पन्न हुई है। तो हम यहाँ जो ज्ञानी पुरुष बात कहते हैं उसका स्वीकार कर सकेंगे। अगर ईमानदारी से हमको वो इच्छा नहीं है, यानी संसार की भी इच्छा है, संसार के कुछ प्रसंग के, कुछ पदार्थ के, तो उस स्मरण में बात रहने वाली नहीं है, स्मरण छूट जाएगा। जो बात वो कहना चाहता है कि बार बार इसका स्मरण करना, लेकिन उस पर रहने वाला नहीं है। तो पहले हमको हमारे में वो देख लेना है, खरेखर वास्तव में हमको मोक्ष मार्ग की इच्छा है या नहीं, या बाकी हमको संसार छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, क्या भोगना है, क्या बात है, तो पहले हमको देख लेना चाहिए, तब तो आगे की बात का काम है होगा, वरना होने वाला है नहीं, तो स्वाध्याय हो गया, बात खत्म। तो ये स्वाध्याय के लिए नहीं है सिर्फ, ये जो कह रहे हैं वो बात अमलीकरण की है, क्या सिर्फ स्वाध्याय की नहीं है, अमलीकरण की है, इसलिए वो बात पहले चेक कर लेनी चाहिए कि बराबर मार्ग की इच्छा उत्पन्न हुई है। कोई भी आदमी परस्पर विरुद्ध ऐसे दो मार्ग पर एक साथ नहीं चल सकता, जैसे एक मार्ग पूर्व में जाता है, एक पश्चिम में, या तो पूर्व में जाएगा चलने वाला, या तो पश्चिम, एक साथ दो 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 दिशा में जा सकेगा, ऐसा ही संसार मोक्ष का है, दोनों प्रतिपक्ष में है। तो तुम देखो अपने आप में कि तुमको किस मार्ग में जाना है, दो घोड़े की सवारी तो होने वाली है। तो अंतर से जिसको संसार मार्ग में नहीं जाना है, यानी अंतर से उसको थकान आई है, उसके लिए ये पत्र है। बाकी तो स्वाध्याय अनेक बार करेंगे, हमारी परिस्थिति वहां की वहां रह जाएगी, कौन सा विकल्प बार बार स्मरण करने का है कि अनंत काल से जीव का परिभ्रमण होने पर भी उसकी निवृत्ति, उसका नाश क्यों नहीं होता। अनंत काल से जीव का मैंने मेरा, जीव कौन है, मैं हूं, भी माने में कोई पर की पर का विकल्प दूसरे का विकल्प हमें नहीं करना है। अनंत काल से मेरा परिभ्रमण होने पर भी उसका नाश क्यों नहीं हो रहा है? परिभ्रमण क्यों चालू रहा है? और ऐसा मैं क्या करूं? ऐसी कौन सी करनी करूं कि जिससे वो परिभ्रमण का नाश हो जाए? ये मेरा संशोधन का विषय है। मेरा परिभ्रमण चालू रहा है अनंत काल से और उसका नाश नहीं हो रहा है, ये मेरे चिंता का विषय है। और कैसे नाश हो, ये मेरा संशोधन का विषय है, मेरी जिज्ञासा का विषय है, मेरी भावना का विषय है। ये दो प्रकार के परिणाम बार बार होना चाहिए, यानी विस्मरण नहीं होना चाहिए। कब तक? कि जब तक पूर्ण शुद्धि का पूर्णता का लक्ष्य नहीं हुए तब तक, क्योंकि ये चिंतना और ये प्राप्ति की भावना की वेदना प्राप्त किए और प्राप्ति होने से पूर्णता के लक्ष्य में परिणमन करेगा। कारण कार्य का दोनों में संबंध है। और ऐसा पूर्णता का लक्ष्य होवे तभी यथार्थ चिंतना और वेदना हुई है, ऐसा गिनना। वरना कुछ होकर के, कुछ खेद होकर के चला जाएगा जिसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो खेद कार्य साधक नहीं हुआ। कार्य साधक कब हुआ? पूर्ण शुद्धि का लक्ष्य, पूर्ण शुद्धि का ध्येय निश्चित हुआ तब। इसलिए जहां तक ऐसा रिजल्ट नहीं आया लक्ष्य का, पूर्ण शुद्धि के लक्ष्य, वहां तक उसका विस्मरण होना नहीं चाहिए। अगर वो विस्मरण हो गया या होता रहेगा तो समझना कि हमको परिभ्रमण का भय, भवभ्रमण का भय है ही नहीं, उसकी कोई चिंता है ही नहीं, मान के चलना चाहिए। साबित करने की जरूरत नहीं है। अब कहते हैं कि इस वाक्य में, इस वचन में अनंत अर्थ समाया है, समाविष्ट है, वो कैसे? तुम चिंतना में आओ तो पता चलेगा, सुनने से तो सुना आम सुना हो जाएगा, कहां तक वो स्मरण में रहेगा? सुने सुनी हुई बात कहां तक स्मरण में रहती है? नहीं रहती। जो परिभ्रमण की चिंतना में आता है उसको ज्ञानी का इस जो वचन है, ये जो वचन दिया है, उसमें कितना अर्थ, कितना भाव समाया है उसका पता उसको चलेगा। कैसे? कि जीव को परिभ्रमण के कारण रूप अनेक प्रकार के अनंत भाव हुए हैं, हो रहे हैं, उसका भाव भाषण होगा। हाँ, ये जो मेरे परिणाम चल रहे हैं, ये सब ऐसे ऐसे ही मैंने परिभ्रमण किया, ऐसे ही मैंने परिभ्रमण किया, ऐसे ही मैंने परिभ्रमण किया, तो चिंतना होते ही इसमें क्या अर्थ भरा है कितना अर्थ भरा है उसका पता चल जाएगा। एक वाक्य में अनंत अर्थ भरा है। देखो ज्ञानी का ज्ञान, देखो ज्ञानी का ज्ञान। एक वाक्य कहकर के, एक वचन कहकर के कहते हैं कि देखो इसमें अनंत अर्थ भरा है। कैसे कहते हैं कि ये परिस्थिति में वो गुजरे हुए हैं, इसलिए उनको मालूम है। यहाँ तो समस्या और समाधान दोनों साथ में देते हैं कि तुम्हारी ये समस्या है, उस समस्या का समाधान निकालते वक्त तुमको ऐसा ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मानना कि तुम्हारी समस्या में अभी आई नहीं। क्यों? तो बहुत सी बातें सुन करके बौद्धिक स्तर पर उसका निर्णय लिया जाता है और बौद्धिक स्तर पर आगे बढ़ना जाता होता है। इस प्रकार का यहाँ बात नहीं है। यहाँ तो इसका असर होते ही परिभ्रमण का भाव भाषण हुआ कि कितना दुख, इसका कोई हिसाब में इतना दुख है। ऐसा भाव भाषित होते ही उसकी चिंता हुए बिना तो करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। और करने से कर सकते नहीं, कोई कृत्रिम रोली रोना धोना हो गया तो इसका कोई मूल्य है नहीं। इसलिए कहते हैं कि इस वाक्य में अनंत अर्थ समाया हुआ है और इस वाक्य में कही हुई चिंतना किए बिना या चिंतना हुए बिना
अनंत अर्थ को विजय कोई पहलू से
जी
अनंत अर्थ को जैसा मैं समझा हूँ पक्ष को विजय को इस विजय का
एक साइड तो ही कही बीजी साइड में सॉल्यूशन भाषे से कि जो आटला बढ़ा परिभ्रमण ना भाव है तो एनी समय उपदेश पर होव जोइए। जे दोष थी परिभ्रमण थाय से, जेवा जेवा दोष थी परिभ्रमण थाय से तो तेवा तेवा दोष मटाड़वा माटे उपाय पर होवो घटे छे। એમ પણ ઊંડેથી વિચારતા આવ્યા વિના એટલે ભાવોની દુનિયા કેટલી વિશાળ છે એનો ખ્યાલ આવશે। ભાવો કી દુનિયા હૈ ઉસકી ભી વિશાળતા બહુત હૈ तो ख्याल में आ जाएगा बात। और इस भावों में मैं भटक रहा हूं वो मेरी भाव परिभ्रमण की परिस्थिति है और फिर जन्म मरण हो रहा है भिन्न भिन्न क्षेत्र में भिन्न भिन्न परिस्थिति में एकेंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक फिरियंश में मनुष्य में देव में और नारके में ये परिभ्रमण है, द्रव्य परिभ्रमण है। जीव द्रव्य परिभ्रमण कर रहा है, इसका कारण भाव परिभ्रमण था। भाव परिभ्रमण कारण है, द्रव्य परिभ्रमण उसका फल है। अनंत काल से मेरा परिभ्रमण हो रहा है, उसका नाश क्यों नहीं हो रहा है उसको खोजने को जाएगा ना तो भी मालूम पड़ेगा कि उसमें अनंत अर्थ समा हुआ है। तो हमको ये बात प्रवचन से नहीं समझनी है, चिंतना में आकर के वो बात समझनी है। क्यों? कि फीलिंग स्टेज है वो, चिंतना है वो फीलिंग स्टेज है, वैचारिक स्टेज नहीं है। फीलिंग स्टेज जो होता है, फीलिंग स्तर जो होता है, उसको यथार्थ समझने के लिए वैसे फीलिंग में आना जरूरी है। जैसे एक आदमी हमको मिला कि भाई हमको हमारे आत्मा पर प्रेम होना चाहिए, हमको गुण का प्रेम होना चाहिए, लेकिन मेरे जीवन में कभी प्रेम मैंने हुआ ही नहीं, किसी से प्रेम, किसी पर मेरे को प्रेम हुआ नहीं, मुझे किसी से प्रेम हुआ ही नहीं, और मैं ये भाषा उसको समझता ही नहीं, मैं क्या करूं? तो उसको तो प्रेम का भाव आएगा तभी पता चलेगा कि वो क्या चीज होती है। कि जिसके ऊपर प्रेम होता है उसके बिना तड़पन क्या होती है वो तभी पता चलता है। तो ये सब फीलिंग की जो बात है वो फीलिंग से समझी जाती है। बिना फीलिंग वाले को, इस प्रकार के बिना फीलिंग वाले को वो बात समझ में नहीं आती। तो समझना है तो फीलिंग में आ जा, वरना वो बात यथार्थ रूप से समझ में आएगी नहीं। जैसे माँ को मातृत्व प्रेम होता है, तो मातृत्व प्रेम का पता पिता को नहीं चलता है तो दूसरे को कहां से चलेगा? क्या वो संतान है वो तो दोनों का है, फिर भी माँ माँ होती है, माँ है वो माँ ही होती है। गुजराती में पिता को बापा कहते हैं, क्या कहते हैं? पापा। और माँ को बा कहते हैं। पापा क्या है? बा का पा भाग, मैंने पाव माँ को जो प्यार होता है, प्रेम होता है, इसका वन फोर्थ पिता को होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। जनरल बात है, स्पेसिफिक किसी व्यक्ति की कोई बात नहीं, जनरल बात वो हमारे यहाँ बोली जाती है। तो माँ होती है वो माए होती है। अब कोई समझना चाहे कि वो माँ का मातृत्व प्रेम कैसा होता है, तो माँ बनो तो भी पता चलेगा। कब पता चलेगा? माँ बनोगे तो, इसके पहले वो पता नहीं चल सकता। ऐसी स्वानुभव का सुख है, कोई कितना भी ज्ञानी बतावे अनुभवी समझ में नहीं आएगा, आनंद की महिमा करे समझ में नहीं आएगा। एक तो बराबरी करने की कोई चीज है ही नहीं, फिर भी बता दे कि इंद्र का इंद्रासन भी इसके आगे कुछ नहीं है, इस प्रकार की कंपैरिजन की वो चीज ही नहीं है, क्योंकि वो किसी के साथ बराबरी हो ही नहीं सकती। तो अनुपम चीज है, किसके उपमा देंगे? तो पर तो फिर भी समझ में नहीं आएगा, उसके लिए तो स्वानुभव होना ही जरूरी है। જિજ્ઞાસા ભાવના, શું કરવા, શું કામ થઈ રહ્યું છે અને શું કરવાથી માટે ઉપાય શું. ઉપાય માટે દ્રઢ થઈને જોયા વિના એમ વાત આવશે. એ વાક્યમાં કહેલી ચિંતા કર્યા વિના, એટલે પરિભ્રમણની ચિંતા કર્યા વિના અને તેને માટે દ્રઢ થઈને જોયા વિના તડપણ. ઉસકો માર્ગ પ્રેમ કહેતે હૈ, માર્ગ ભક્તિ કહેતે હૈ. તો કબ આતી હૈ કે ઉસકે લિયે તડપણ આતી હૈ. તડપણ શબ્દ લિયા ના તરસે બિના, બહુ તૃષા લગતી હૈ તો તડપણ હોતી હૈ ના, તરસે બિના. અપ્રાપ્તિ કા દુઃખ, ક્યા અપ્રાપ્તિ કા દુઃખ, ઉપાય કી પ્રાપ્તિ નહીં હૈ ઇસકા દુઃખ. અરે મેરે પાસ મેરી પરિભ્રમણ સે છૂટને કા કોઈ ઉપાય કી પ્રાપ્તિ નહીં હૈ. મુજે ચાહિયે મિલ નહીં રહા હૈ, ઇસકે લિયે તરસે બિના. માર્ગ કી દિશા કા ભી અલ્પ ભાન હોતા નહીં હૈ, વર્તમાન મેં કિસી કો ભી હોતા નહીં હૈ. ઇસ સ્થિતિ મેં આયે બિના, યે ફીલિંગ સ્ટેજ મેં આયે બિના, કિસી કો ભી માર્ગ કા કૈસા હોતા હૈ ઇસકા તો ભાન નહીં હોતા, લેકિન માર્ગ કિસ દિશા મેં હૈ ઇસકા અલ્પ ભી ભાન નહીં હોતા. ધારણા વાળા બોલ દેંગે કે અંતર્મુખ દિશા મેં માર્ગ હૈ, દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપ હૈ, લેકિન યહાં ઉસકા ભાન કી બાત ચલી હૈ, ઇસકે જાનકારી કી બાત નહીં ચલી હૈ. તુમ્હારી જાનકારી હૈ, યે ભાન તો નહીં હૈ. શબ્દ કે પ્રયોગ ક્યાં આયા, ભાન આયા, જાનકારી વાળા નહીં આયા. ભાન હોના કે મેં પરિભ્રમણ કર રહા હું, તભી ઉસકી ચિંતા હોય ઓર ઉસકી તરસ આયેગી, તબ માર્ગ કી દિશા કા ભાન આયેગા, વરના જાનકારી હોગી વો બેકાર જાયેગી. તો જાનકારી બેકાર હી હૈ, જાનકારી હી બેકાર હૈ, ઇસે કુછ હોને વાલા નહીં. મોક્ષ માર્ગ કી પ્રાપ્તિ કે લિયે મુમુક્ષુ કી ભૂમિકા ચાહિયે, ઓર મુમુક્ષુ કી ભૂમિકા કા યે પ્રથમ ચરણ હૈ. બિના મુમુક્ષુ હુએ, બિના આત્માર્થી હુએ કોઈ મોક્ષ માર્ગ કો પાતા નહીં, ઓર જો મુમુક્ષુ મોક્ષ માર્ગ પ્રાપ્ત કરને કે લિયે મુમુક્ષુતા મેં આતા હૈ, તો ઉસકો પહેલા સ્ટેજ પ્રથમ ચરણ યહી હૈ. તો લિખતે હૈ કે ઉસકા ભાન કિસી કો હોતા નહીં, પૂર્વ મેં ભૂતકાળ મેં કભી કિસી કો હુઆ નહીં, ઓર ભવિષ્યકાલ મેં હોગા ભી નહીં. હમને એ તો એસા જાના હૈ, હમારે અનુભવ સે હમને તો એસા જાના હૈ, ઇસલિયે આપ સભી કો કિસી કો બાકી નહીં રખા, કે તુમ વિદ્વાન હો, તુમકો વેદના નહીં આવે તો ચલેગા, તુમને બહુ શાસ્ત્ર પઢાયે. इसके बाद क्या जानना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही जानने में आता है. इसके पहले कुछ जानने में आया वो बेकार ही बेकार रहेगा. कैसा कहने का, Yeah. वेदांत के एक विद्वान के प्रति लिखा गया है। पत्र का विषय है आत्मकल्याण का उपाय व्यवस्थित क्रम से करना चाहिए, ये आशय है। सारे पत्र का जो आशय है वो वही है कि अगर जीव को आत्मकल्याण करना है तो उसकी कोई व्यवस्थित पद्धति है तो पद्धति करना जरूरी है, वरना प्राय जिसको जैसा मन होता है वैसा वो कर लेता है। कुछ बुद्धि के बलवान हैं वो ज्यादा शास्त्र में बुद्धि लगा लेते हैं, कुछ पूजा भक्ति में अपने परिश्रम कर लेते हैं, जिसको शरीर बल ज्यादा है तो व्रतादि में अपना शक्ति का खर्च कर लेता है, पैसे वो है वो दान और यात्रा में खर्च कर लेते हैं परिश्रम के साथ, ऐसे सब अपनी मनमानी कर लेते हैं। लेकिन ऐसे काम नहीं होता, ज्यादा करके शुद्ध भाव होता है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं, मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं होता। इसलिए मोक्ष मार्ग में प्रवेश होने के लिए मुमुक्षु को भी व्यवस्थित रूप से काम करना जरूरी है। इसलिए अपने वो मुमुक्षु का आरोहण क्रम वो लिखा ना, मिला नहीं मिला होगा मुमुक्षु का आरोहण क्रम है? नहीं मिला, ये अब नया प्रकाशन हुआ है। अब सोनगढ़ कब जा रहे हैं?
कल
जाएंगे ना, तो पांच कॉपी देंगे हम। अभी कहाँ ठहरे हैं?
वहाँ पे वो नई बिल्डिंग भी बन रही है, चाली में समिति के पास में नई बिल्डिंग बन रही
है। नहीं, इधर कहाँ ठहरे हो?
सत्संग भवन
में। वहाँ तो किताबें पड़ी है, ये है
वहाँ
पाँच निकल अपने आप ही है, हमको है ना, आप ही दे दो। वो बम्बई वाले लक्ष्मी बहन करके हैं, जानते हैं, उनको दे देना पाँच कॉपी। यहाँ कुशलता है, आपकी कुशलता चाहता हूँ। आज आपका जिज्ञासु पत्र मिला, बड़ा विद्वान होने के बावजूद भी जिज्ञासा से पत्र लिखा है। उस जिज्ञासु पत्र के उत्तर में जो पत्र भेजना चाहिए वह पत्र निम्न प्रकार है, मैंने उस प्रत्युत्तर जो देना चाहिए वो निम्न प्रकार है। तो अगले की जिज्ञासा देख करके उन्होंने ये पत्र लिखा है। इस पत्र में गृहस्थाश्रम संबंधी अपने कुछ विचार आपके सामने रखता हूँ। उन्हें रखने का हेतु मात्र इतना ही है कि किसी भी प्रकार के उत्तम क्रम में आपके जीवन का झुकाव हो, क्योंकि मुमुक्षु प्राय किसी न किसी परिवार में जन्म लेता है तो उनका तो ग्रह जीवन ही होता है, पारिवारिक जीवन तो होता ही है। उस परिवार के बीच में रहते हुए भी किस पद्धति से काम करें तो अपना आत्मकल्याण हो, वो बात को रखना चाहते हैं। किसी भी प्रकार के उत्तम क्रम में, देखो क्रम शब्द का क्रम मैंने जैसे कैसे बिना सोचे कोई काम कर लेना, ऐसा नहीं। गुरुदेव दृष्टांत देते थे हलवा का, सिरा। हलवा बनाना हो तो हलवा की पद्धति से बनेगा, भले ही तीन चीज है, आटा घी और गुड़ या शक्कर, तीन चीजें, फिर भी तीन को एक साथ मिला करके उसको चूल्हे पे चढ़ाते नहीं है।
क्रम से काम करता है, सिस्टम से काम करता है। पर उस क्रम का जब से आरंभ होना चाहिए, महाकाल अभी आपके पास आया है, आप क्रम का प्रारंभ कर सके उस भूमिका में आपकी जिज्ञासा देखी जाती है, इसलिए उस क्रम का बताने का उचित समय लगता है। इस वक्त आपको इस क्रम को बताना उचित है, और बताए हुए क्रम से के विचार अति सांस्कारिक होने से पत्र द्वारा प्रकट हुए हैं। सांस्कारिक विचार का मतलब क्या होता है? अच्छा है, गुण प्रकट होवे ऐसा, उसको सांस्कारिक कहते हैं, जिससे गुण प्रकट हो गए। हाँ, आपको और किसी भी, फिर जनरल कर दे, आपको और किसी भी आत्म उन्नति क्रम के इच्छुक या प्रशस्त क्रम के इच्छुक, दोनों एक ही बात है, आत्म उन्नति कहो या प्रशस्त कहो, उस क्रम के इच्छुक को वे विचार अवश्य अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। तो आपको तो भी उपयोगी होगा, लेकिन किसी को भी उपयोगी हो सकता है ये क्रम का विषय। तत्वज्ञान की गहरी गुफा का दर्शन करने जाए तो वहां नेपथ्य में से ऐसी ध्वनि ही निकलेगी, नेपथ्य मैंने आत्मा के भीतर में से, अंतरात्मा में से, कि आप कौन हैं, यानी मैं कौन हूं, मैं ये शरीरधारी लोग जैसे पहचानता है वही मैं हूं, ऐसा मेरा स्वरूप है, या कोई मेरा स्वरूप कोई और ही है। अपनी जो मान्यता है उसमें दरार पड़ गई, दरार एटले तिरार। निशंक क्या है? मैं तो फलाना फलाना हूं, मैं तो फलानी फलानी हूं, निशंक रूप से प्रवृत्ति करता है जीव, उसी मान्यता के आधार पर सब जीवन की प्रवृत्ति चल रही है। अब दरार पड़ी, मैं कौन हूं, मैं कोई जीव हूं, मैं कोई आत्मा हूं, तो कैसा हूं, या मैं शरीरधारी जैसा लोग जानते हैं समझते हैं पहचानते हैं वैसा ही मैं हूं, कहां से आए हैं, ये मनुष्य कैसे हो गया। बहुत से जीव ऐसे देखे जाते हैं जो कि मनुष्य नहीं है, छोटे मोटे बहुत से प्राणी दिखने में आते हैं, त्रिजगति के स्पष्ट रूप से दिखने में आता है, तो फिर हम मनुष्य कैसे हो गए। जो गहराई से विचार करता है उसको ये समस्या सामने आएगी, और आपके पास ये सब क्या है, यानी मेरे जो संयोग है वो तो इस प्रकार के क्यों है, दूसरे प्रकार के क्यों नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार के संयोग वाले मनुष्य दिखने में आते हैं, तो मेरे इस प्रकार के क्यों हुआ। उसका भी समाधान ढूंढना का प्रकार जिज्ञासा हुए बिना नहीं रहेगी। आपको अपनी प्रतीति है, अपनी मौजूदगी की प्रतीति किस प्रकार की है, अपनी प्रतीति मैंने अपने यहाँ जो अस्तित्व है मौजूदगी है उसका विश्वास किस प्रकार का है, कि आप विनाशी हैं या अविनाशी हैं अथवा कोई तीसरे प्रकार के 83 हैं एलिटरेशन क्या है, आप कैसे समझते हो? मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा विश्वास है, ऐसी प्रतीति है, या मैं शाश्वत हूँ ऐसी प्रतीति है, या कोई कल्पना में कोई तीसरी बात है क्या? देख लो, तुम जांच करो, कहाँ ले गए उनको? अपनी ओर ले गए। ये सब विचार भीतर में से आएगा। ऐसे ऐसे अनेक प्रश्न उस ध्वनि से मैंने अंतर आत्मा में से हृदय में प्रवेश करेंगे, ऊपर छले नहीं रहेंगे क्या? हृदय में प्रवेश करेंगे, मैंने हलचल मचेगी, अंतर में हलचल मचेगी, बहुत खलबली हो जाएगी, ऐसा कहते हैं। और इन प्रश्नों से जब आत्मा घिर गया, क्या हुआ? ऐसे ऐसे प्रश्नों से जब आत्मा घिर गया तब फिर दूसरे विचारों के लिए बहुत ही थोड़ा अवकाश रहेगा। मैंने जो संयोग की, शरीर की, संसार की चिंताएं हैं वो छूट जाएगी। मतलब वो है कि जीव को, संसारी जीव को प्राय संसार के संयोग के, अपने अनुकूलताएं प्रतिकूलता के विचार इतने आते हैं कि उससे वो घिरा हुआ रहता है, और छोड़ना चाहे तो छोड़ नहीं सकता है। उसको कभी कभी आकुलता भी होती है, फिर भी नहीं छोड़ सकता है। अब इस चिंता में आ जाएगा, ये फिर प्रश्नों में घिर जाएगा तो वो छूट जाएगा। यही मुमुक्षुता का क्रम का प्रारंभ है। क्या आगे क्या लिखा था? आरंभ होना चाहिए उस क्रम का, जब आरंभ होना, आरंभ होने का आपका समय आ गया है। विद्वान था, उसको बोले कि क्रम का आरंभ करने का तुम्हारा समय है। बड़ा विद्वान था, मनसुख राम, सूर्य राम त्रिपाठी, वो तीन चार भाई थे जो बड़े थे। उसका नाम है गोवर्धन राम माधव राम त्रिपाठी, जिसने सरस्वती चंद्र लिखा। सरस्वती चंद्र पिक्चर भी उतरा इसके ऊपर से, जो चार नॉवेल है, बड़ी चार भाग में है, और बड़े विद्वत्तापूर्ण लिखने वाला आदमी है गोवर्धन राम त्रिपाठी। उसमें उसने धर्म, राजकारण, गृहस्थी, कई प्रकार के प्लॉट किए हैं। आयोजन बहुत बढ़िया है, डायलॉग भी बढ़िया है, पात्र भी अच्छे चुने। गुजराती साहित्य का मैं सरस्वती चंद्र का अव्वल नंबर का स्थान है। और कॉलेज में कभी, जो आर्ट्स कॉलेज है उसमें कभी कभी इसका कोई नॉवल चलता है, टेक्स्ट बुक के स्थान में भी चलता है। हम लोग तो स्कूल में पढ़ते थे, उस वक्त सब नॉवल पढ़ते थे तो वो सब पढ़ डालते थे। पढ़ा है हमने, चारों भाग पढ़ा है। तीसरा भाग में तो एक पूरा चैप्टर संस्कृत में लिखा है, बहुत तो विद्वान था संस्कृत का जानकार। तो द्वैता अद्वैत विवरण ऐसा करके एक चैप्टर लिखा है। सरस्वती चंद्र है, उसको वैराग्य आता है, गृहस्थी छोड़ करके सन्यासी हो जाता है, कुछ मुनिराज के आश्रम में चला जाता है। वहाँ उनको आत्मा द्वैत भी है और अद्वैत भी है, भेद वाला भी है और अभेद वाला भी है, उस विषय पर उन्होंने अपनी विद्वत्ता को बताई है, प्रदर्शित की है। पूरा चैप्टर संस्कृत में लिखा है, गुजराती नॉवेल है, पूरा चैप्टर एक संस्कृत में लिखा है। इनके भाई हो, कजिन है त्रिपाठी फैमिली, तो उनको ये नहीं कहा कि आप तो बड़े विद्वान हैं, आपको मुमुक्षुता का क्रम का आरंभ करना जरूरी है, तो पहले आप ये विचार में आओ। अगर आपकी आत्मा इस विचारों से घिरेगी तब आपके संसार के विचार छूट जाएंगे। यहाँ से संसार छूटने का आरंभ होना चाहिए। ये तत्व ज्ञान की गहरी गुफा में जाएं, आत्मा की खोज करें और संसार के विचार छूट जाएं। यद्यपि इन विचारों से ही अंत में सिद्धि है, ऐसे जो विचार है वो जरूरी है, यथार्थ है, क्योंकि इस विचारों का अंत ऐसा आएगा कि आपको सर्वार्थ सिद्धि, सब प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। अर्थ माने प्रयोजन, सर्व सब प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। इन्हीं विचारों के विवेक से जिस अव्याबाध सुख की इच्छा है उसकी प्राप्ति होती है। सिद्धि में वो बात है कि अविनाशी सुख की जो प्राप्ति है, अव्याबाध सुख की प्राप्ति है, वो प्राप्ति हो जाएगी। इन्हीं विचारों के मनन से अनंत काल की उलझन दूर होने वाली ही है। ये विचारों से अनंत काल की उलझन दूर हो जाएगी। देखो नहीं, यथार्थ क्रम का प्रारंभ यहाँ से होता है, तथापि ये सबके लिए नहीं है। ये क्रम में सब प्रवेश नहीं कर सकते। जिसको क्रम बताया वो बोलता है कि हमको ऐसा होते अब क्या करें, अरे तुमको क्रम बताया है अब क्या करें, क्यों पूछते हो, क्रम प्रवेश करो, दूसरा इलाज क्यों ढूंढते हो। लेकिन दूसरा इलाज क्रम में प्रवेश करने का ध्यान नहीं गया तो दूसरा इलाज प्रति ध्यान जाता है, इसलिए सबका प्रवेश नहीं होता। वास्तविक दृष्टि से देखने पर उसे अंत तक पाने वाले, उसे मैंने उस क्रम को अंत तक पाने वाले पात्रों की न्यूनता बहुत है। बहुत कम पात्र जीव इस क्रम का प्रारंभ करता है और अंत तक उस क्रम को पा लेता है, ऐसे पात्र बहुत कम है। प्रारंभ करके आगे बढ़ना क्रम से और क्रम पूरा पदार्थ निर्णय स्वरूप का भाव भाषण तक जाना कोई लिया है अपने आरोह क्रम में, आखिर का स्टेज कौन सा लिया है, पदार्थ निश्चय, फिर तो मोक्ष मार्ग में प्रवेश होने के क्रम है। तो यहां से तो मोक्ष मार्ग का क्रम चालू होता है। तो ऐसे पात्र बहुत कम है, काल बदल गया है, लोग अनात्मा की चिंता से मुक्त होते हैं, तो आत्मा की चिंता करेंगे कहां से। काल बदल गया है, इस वस्तु का अधीरता और अशौचता से अंत लेने जाने पर जहर निकलता, तो क्या है कि चाहिए तो अव्याबाध सुख और अपनी मनमानी कर ले, जो शास्त्र पढ़ने की योग्यता नहीं है वो शास्त्र पढ़ लेते हैं, जो त्याग करने की योग्यता नहीं है उसका त्याग कर लेते हैं, तो अधीराई से काम करता है और अशौचता से काम करता है। उसमें जो पवित्रता का क्रम, निर्मलता आने का जो क्रम है वो तो है ही नहीं, परिणाम तो मलिन है और त्याग कर दिया। पर जिस पदार्थ का त्याग किया उसको भोगने का अभिप्राय और रस पड़ा रहे, तो चीज को छोड़ दिया, तो अशौचता है, अधिराई है, ऐसे कभी काम होता नहीं, क्योंकि मलिनता माँ की मारेगी, वो क्रम विपर्यास है। देखिए अनेक प्रकार के विपर्यास होते हैं, स्वरूप विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता और कारण कार्य विपरीतता, वो क्रम में आता है तीसरा फिर बंद। एक भी विपर्यास रहे वहां तक सम्यक दर्शन नहीं होने वाला है। उसमें कारण कार्य विपरीतता में ये क्रम वाली विपरीतता है, वो क्रम विपर्यास है, वो भी एक बड़ा विपर्यास है। जहां तक वो रहता है वहां तक काम होता नहीं है। और भाग्यहीन अपात्र दोनों लोगों से भ्रष्ट होता है, मैंने उसका संसार भी बिगड़ता है और उसका परमार्थ भी बिगड़ता है, आलोक और परलोक दोनों बिगड़ता है, क्योंकि परिणाम गिर जाएंगे, परिणाम आगे बढ़ेंगे
नहीं।
इसलिए अमुक संतों को अपवाद रूप मानकर बाकी को उस क्रम में आने के लिए, उस गुफा का दर्शन करने के लिए बहुत समय तक अभ्यास की जरूरत, अभ्यास माने प्रैक्टिस। कुछ एक जीव को बात कर, कुछ एक मैंने कोई पूर्व संस्कारी होते हैं उसको इतना परिश्रम नहीं लगता, इतने क्रम में आने का उतना जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि आगे कुछ क्रम हो चुका है उसका। कैसे को बात करके
प्रैक्टिस
में क्रम का,
हाँ
जो क्रम बताए हैं उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। कदाचित उस गुफा के दर्शन करने की उसकी इच्छा न हो तो भी अपने इस भव के सुख के लिए भी, पर जन्म और मरण के बीच के भाग जिसको जिंदगी कहते हैं किसी तरह बिताने के लिए इस अभ्यास की अवश्य जरूरत है, मैंने शांति से जीवन जीने के लिए भी इसका अभ्यास तत्व ज्ञान का होना जरूरी है। ये कथन अनुभव सिद्ध है, हमारा तो अनुभव हो चुका है, ऐसा कहते हैं बहुतों को ये अनुभव में आया है, हमारे जैसे बहुतों को अनुभव में आया है। बहुत से आर्य पुरुष इसके विचार, इसके लिए विचार कर गए, आर्य मैंने उत्तम पुरुष ज्ञानी पुरुष इसके विचार कर गए हैं। भाषा हम जी भी वापरे से जैन परिभाषा में थे वापरता, आर्य पुरुष लेता, ज्ञानी पुरुष तो जन्म लेता। उन्होंने इस पर अधिक अधिक मनन किया है ज्ञानियों ने, जिन्होंने आत्मा की शोध करके उस अपार मार्ग की बहुतों को प्राप्ति कराने के लिए अनेक क्रम बांधे हैं, अनेक क्रम बांधे हैं। वे महात्मा जयवान हो और उन्हें त्रिकाल नमस्कार हो। वारे पुरुष को महात्मा कह दिया, फिर अनेक क्रम बांधे हैं, यानी जहां जहां विपर्यास है वहां क्रम से बात किया है। जबरदस्त व्यक्ति थे
प्रभु।